श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी उपस्थित हैं। परमात्मा का दिव्य ज्ञान जो कर्मों के गुह्य गति पर आधारित है, उस दिव्य ज्ञान को सुनाने हेतु हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी। कर्मों की गुह्य गति बहुत ही गहन विषय है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है जीवन में, उसे लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है। समय भी बीत जाता है। जब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उसे लेकर मन में कई सारे सवाल आते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मैं ही क्यों शिकार बन जाती हूँ? मुझे ये दुख क्यों मिलता है? मन में कई सारे सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब स्वयं परमात्मा ने दी है इस सुंदर महत्वपूर्ण सेशन हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी लेंगे। उनके माध्यम से परमात्मा का दिव्य ज्ञान सुनेंगे। श्रेष्ठ कर्म किसे कहा जाता है और श्रेष्ठ कर्मों से कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी के द्वारा। आप सभी से नम्र अनुरोध है, करतल ध्वनि से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनेंगे इस विषय पर, वैश्विक एकता के लिए कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान, इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी के माध्यम से परमात्मा का दिव्य ज्ञान।
ओम शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। राजयोग में हमने स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा की सत्य पहचान के विषय में समझा, राजयोग का अभ्यास भी किया, समय की पहचान भी प्राप्त की। ऐसे ही कर्मों की गति के ज्ञान का भी महत्व है। और जैसे कहा कि कर्मों की बहुत गहन गति है, एक साधारण मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। ये संसार तो कर्म क्षेत्र है, हमें कर्मेंद्रियां मिली ही हैं कर्म करने के लिए। इसीलिए कर्म सन्यासी तो कोई भी हो नहीं सकता, दुनिया में लोग संन्यास करते हैं लेकिन कर्मों का संन्यास नहीं कर सकते, क्योंकि आँखों से देखने का कर्म होगा ही, कानों से सुनने का कर्म होगा ही, मुख से बोलेंगे, हाथ पाँव से कर्म करेंगे। अगर वो साधना तपस्या भी करते हैं तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो इसीलिए दुनिया में कोई कर्म सन्यासी नहीं हो सकता। तो अगर हम कर्म की परिभाषा करें तो जो भी कर्मेंद्रियों से क्रियाएं होती हैं उसके पीछे जो भाव और वृत्ति होता है उस अनुसार ही कर्म का स्वरूप बनता है। जैसे देखना ना, ये आम है, हम सभी देखते हैं, लेकिन किस भाव से देखते हैं उससे परिणाम में अंतर आएगा। हम गुस्से से भी देख सकते हैं, हम प्यार से भी देख सकते हैं, किसी की बुरी नज़र भी होती है। और गुरु की नज़र के लिए क्या कहते हैं, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। तो फर्क पड़ेगा अगर देखने के पीछे भाव बदलेगा। कोई प्यार से देखेगा तो हम भी उसे स्नेह से रिस्पॉन्ड करेंगे। और बुरी नज़र वाले के लिए तो क्या कहते हैं, वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। कोई पसंद नहीं करता बुरी नज़र को। तो और ऐसे ही जो गुरु हैं हमारे लिए, उनकी नज़र उनकी दृष्टि तो वरदानी होती है। तो उसके पीछे क्या भाव है, मानो हम कोई कर्म कर रहे हैं, दो तीन व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, एक बहुत उमंग उत्साह से करता है, लगन से करता है, खुशी से करता है, और दूसरा उसी काम को कर रहा है लेकिन बस काम करना है इसलिए कर रहा है, एक ड्यूटी समझ के कर रहा है, तो कर्म के परिणाम में अंतर होगा, होगा या नहीं होगा। तो जो प्यार से कर्म कर रहा है, उमंग उत्साह से कर रहा है, उसको सफलता ज़्यादा मिलेगी, और जो सिर्फ करने के लिए कर रहा है उसको उसी प्रकार की सफलता मिलेगी। फिर भले शिकायत हो सकती है, काम तो हम वही कर रहे हैं, अंतर क्यों, लेकिन अंतर क्यों हो रहे हैं, बाहर से नहीं दिख रहा वो कहाँ का अंतर है, अंदर का, अंदर का भाव क्या है उस कर्म के पीछे, उससे कर्म का परिणाम में अंतर आ जाता है। तो इसीलिए कई बार हम जो शिकायत करते हैं ना, तो वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि ये गति हम नहीं जानते कि परिणाम में अंतर क्यों है, हमारी सफलता में अंतर क्यों है। हम मेहनत तो वही कर रहे हैं लेकिन किस भाव से कर रहे हैं, किस वृत्ति से कर रहे हैं, उसका भी फर्क उसमें पड़ जाता है। फिर कर्म सिद्धांत है, जैसा बीज वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जो करेगा वो भरेगा, एज यू सो सो यू रीप, ये कहा गया। और जितना करेंगे उतना पाएंगे। और फिर जो कर्म करता है वही उस कर्म के फल को भोगता है, यानी आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है तो आत्मा ही उस फल को भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है। इसीलिए हम जो पाप कर्म करने वाला है उसे हम पापात्मा कहते हैं, धर्म के अनुसार कर्म करने वाले को हम धर्मात्मा कहते हैं, महान कर्म करने वाले को हम महात्मा कहते हैं। हालांकि कर्म तो शरीर से कर रही है ना आत्मा, लेकिन टाइटल किसको मिल रहा है, आत्मा को मिल रहा है। तो आत्मा पर वो कर्म का प्रभाव होता है और उसी कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। मानो एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी डैमेज होती है, ड्राइवर को कुछ चोट नहीं लगती, लेकिन उसकी पेनल्टी कौन भरेगा या सजा होगी तो किसको होगी, किसको होगी, ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर चेतन है ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसने जो निर्णय लिया उसके अनुसार वो एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ भी आत्मा चेतन है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो एक मोटर कार की तरह है, जैसे वो मोटर कार जड़ है, ड्राइवर चेतन है, तो इसीलिए कर्म का प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है, आत्मा ही सुख दुख भोगती है। तो चार प्रकार के कर्म हैं जो परमात्मा ने कर्मों की गुह्य गति में हमें समझाए हैं। इनमें से पाप कर्म और पुण्य कर्मों के बारे में तो हम सुनते हैं, लेकिन सत्कर्म और अकर्म की गति भी भगवान हमें समझाते हैं। तो ये चार प्रकार के कर्म हम करते हैं अपने जीवन में। तो पाप कर्मों की परिभाषा क्या है? पाप कर्मों की परिभाषा में कहते हैं, सामान्यतः बोलते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी की हत्या करना, किसी को दुख देना, ये सब पाप है। लेकिन फिर वही कि समय स्थान परिस्थिति व्यक्ति के अनुसार किस भाव से वो कर्म किया गया, उस अनुसार वो कर्म का स्वरूप बदल सकता है। कई बार झूठ बोलना पाप की बजाय पुण्य भी बन सकता है। हम मानो किसी के जीवन बचाने के लिए कोई झूठ बोलता है ना, कोई पेशेंट मरने वाला है और डॉक्टर अगर पेशेंट को कहेगा ये मरने वाला है तो वो तो जितना समय जीना चाहिए उससे पहले तो डॉक्टर झूठ बोलता है ना मरीज को कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो ये झूठ बोलना पाप नहीं है, क्योंकि उसका भाव क्या है? उसका भाव है मरीज के जीवन की रक्षा करना। तो इसीलिए जैसे एक कहानी भी आती है कि एक बार एक गाय भाग रही थी, एक व्यक्ति ने देखा कि वो गाय किस गली में गई, उसी के पीछे कसाई भी दौड़ता हुआ आया। तो वो कसाई ने पूछा, एक गाय यहाँ से गई, आपने देखा? अब उसने देखा तो था, लेकिन उसको पता था ये कसाई पीछा कर रहा है, इसका मतलब गाय क्यों भाग रही है। तो फिर उसने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, हालांकि उसको मालूम है, लेकिन यहाँ उसने झूठ बोला गाय की जान बचाने के लिए। तो फिर ये पाप नहीं क्या हो गया, पुण्य हो गया, कि कई बार झूठ बोलना सच बोलने से भी ज्यादा पुण्य हो सकता है अगर हम किसी के कल्याण के लिए या निस्वार्थ भाव, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर हमने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, अपने मान को बचाए रखने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, तो जरूर वो झूठ बोलना पाप है। एक बच्चा है घर में और वो कुछ नुकसान कर देता है ना, मानो कोई आपने वैल्यूबल चीज रखी है, डेकोरेटिव आइटम रखा है, बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, हाथ लगाएंगे, उठाएंगे उसको और मानो वो उससे गिर गया। दो मिनट हम साइलेंस में बैठे।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा।
तो बच्चा अगर कोई ऐसी चीज़ तोड़ देता है और माँ पूछती है किसने तोड़ा, तो सीधा झूठ बोलता है। उसको पता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो माँ मारेगी या डांटेगी, तो भय के कारण झूठ बोलता है। और वही बच्चा जो है वो अपने दादा दादी को या अपने पिता को जाके सच बोल देगा कि मैंने ये तोड़ा, लेकिन आप मम्मी को मत बताना, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी मुझे कुछ कहने वाले नहीं या दादा दादी मुझे कुछ कहने वाले नहीं। वो बोलेंगे ठीक है बेटा आगे से ध्यान रखना। तो अगर हम किसी से वैसा कर्म कराने के निमित्त बनते हैं तो फिर हमारा भी पाप बनता है कि हमारे भय के कारण सामने वाला झूठ बोल रहा है, ऐसा कर्म कर रहा है। फिर हत्या करना जैसे कहा पाप है, तो जरूर हत्या करना पाप है, लेकिन कोई सरहद पे सिपाही खड़ा है और अगर वो गोली नहीं चलाएगा, दुश्मन की हत्या नहीं करेगा, तो वो हत्या नहीं करने से ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका फर्ज है देश की सुरक्षा करना। और उस समय अगर उसने गोली नहीं चलाई तो दुश्मन उस पर गोली चला देगा और वो दुश्मन देश में घुस जाएगा, तो वो एक को मारेगा, वो घुसकर अनेकों को मार सकता है ना? तो इसीलिए कहा कि समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कर्म का परिणाम अलग अलग होता है, कि वही कर्म जो पाप है वो किन्हीं संदर्भों में किन्हीं परिस्थितियों में हम पाप नहीं कहते। लेकिन साधारणतया पाप की परिभाषा क्या है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो पाप का मूल अभिमान है, अभिमान के वश हम सारा दिन में कर्म करते हैं। अभिमान माना मैंपन में आना, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, होता है ना व्यक्ति को एक ईगो होता है अपना, और उसके कारण दिन में कितनी बार हम मैं करके कर्म कर। सबसे ज्यादा ये देखा गया जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं सारे दिन में वो मैं है, और उसके प्रभाव में जब भी हम कर्म कर रहे हैं वो पाप कर्म बन रहा है। फिर विकारों के वश किए गए कर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कर्म पाप कर्मों की श्रेणी में जाते हैं। और कलयुग में तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। कह सकता है कोई, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके साथ ही बाल बच्चे ईर्ष्या द्वेष नफरत ये सब के अंदर हैं। तो काम के वश हम देखते हैं आज कितने अपराध होते हैं, जो भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी घरों में सुरक्षित नहीं है आज, ये काम की अति है आज दुनिया के अंदर। क्रोध की अति हम देखते हैं, क्रोध की अति में आकर के कोई किसी की हत्या कर देता है। आज जितनी भी हत्याएं होती हैं उसका कारण क्रोध होता है, उसका मूल जो है वो क्रोध के कारण ऐसा होता है। लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब क्रोध के कारण होता है। फिर लोभ है दुनिया में, तो लोभ के कारण क्या अपराध होते हैं? व्यक्ति चाहता है ज्यादा से ज्यादा मैं धन कमा लूं, तो फिर मिलावट करना, कालाबाजारी करना, रिश्वतखोरी करना, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो भ्रष्टाचार का मूल क्या है? लोभ है। कि लोभ में आकर कहते हैं इंसान आज पेट के लिए नहीं कमाता है, पेट को ज्यादा नहीं चाहिए, पेट को तो दो ही रोटी चाहिए, लेकिन पेटियों के लिए कमाता है ना। तो पुराने जमाने में पेटियां, आज होते हैं बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम कमाते हैं, जबकि हमको पता है कि वो सारे करोड़ों जो है बैंक में ही धरे रह जाएंगे ना, वो तो कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। और खाएगा कितना? जैसे कहा, दो रोटी खाएंगे, जितना पेट को जरूरत है उतना ही खाएंगे, और वो भी जो आजकल ज्यादा धनी होते हैं ना, उनको बीमारियां भी ऐसी ऐसी होती हैं कि डॉक्टर इतनी परहेज लगा देते हैं कि जो आम इंसान खा सकता है वो खा भी नहीं सकते। मीठा खाना बंद, तला हुआ खाना बंद हो जाता है ना, तो फिर वो खाने का भी सुख नहीं ले सकते। और फिर एक बिस्तर पर सोएंगे, कितने बिस्तर पर सो जाएंगे? एक घर में रहेंगे, चलो चार घर आपने बना लिए, पर रहेंगे कितने घर में? एक ही घर में रहेंगे। तो इंसान की आवश्यकताएं कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसीलिए कहते हैं देयर इज इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रीड्स। आवश्यकताएं पूरी करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन लोभ तो इंसान का कभी भी पूरा नहीं हो सकता, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, और आज कितने अपराध केवल उसी के कारण होते हैं। फिर मोह के कारण भाई भतीजावाद फैला हुआ है। कोई व्यक्ति पावर में आ जाता है तो अपने ही लोगों को वो पोजीशन देना चाहता है। उसके कारण अगर कोई योग्य व्यक्ति भी है और अगर वो वंचित रह जाएगा तो क्या होगा? उसका पाप किसको लगेगा? जिसके कारण वो रह जाता है। अब अहंकार के कारण कहते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, कि जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अहंकारी व्यक्ति में गुण होते हैं, लेकिन उनके गुणों का लाभ किसी को नहीं मिलता, जैसे ऊंची खजूर का लाभ किसी को मिलता नहीं, वो ना छाया देता है और ना ही उसके फल तक कोई पहुंच सकता है। लेकिन एक आम का वृक्ष जो है वो जब फलता है तो और ही झुक जाता है, और उसके फल छाया सबको मिलते हैं। तो ये विकारों के वश हम सारे दिन में कोई ना कोई ऐसे पाप कर्म करते ही रहते हैं। फिर दैहिक दृष्टि से जो कर्म किए जाते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का तो अज्ञान है, ये तो शिव बाबा ने आकर के हमें आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन हम तो अपने को देह ही समझते हैं। तो दैहिक दृष्टि से हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि देह के स्तर पर बहुत अंतर है, जाति धर्म भाषा लिंग रंग वर्ण ये सब, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, मैं मराठी हूँ, ये गुजराती है, या स्त्री है पुरुष है, काला है गोरा है, लंबा है छोटा है, ये सब अंतर होते हैं ना शरीर के स्तर पर। तो हम जब शरीर को देखते हैं तो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, और उसके कारण भी पाप कर्म होते हैं। फिर स्वार्थ के वश किए गए कर्म, मेरा ही भला हो, जैसे आज सवेरे भी हमने समझा है ना कि कलयुगी दुनिया में अधिकतर मनुष्य स्वार्थी होते हैं, दूसरे का भी छीन कर मेरा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो पाप कर्म हो जाते हैं। फिर परमात्मा से विमुख करने वाले कर्म, जो हमें भगवान से दूर करें, ऐसे कर्म भी पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तो फिर इस अनुसार हम आज सारे दिन में जो कर्म कर रहे हैं वो कौन सी श्रेणी में जा रहे हैं, कौन सी श्रेणी में जा रहे हैं, कौन सी श्रेणी में जा रहे हैं? पाप कर्मों की श्रेणी में जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको कलयुग कहते हैं। क्योंकि कलयुग माना विकार प्रधान युग है और इन कर्मों के परिणाम कैसे पता चलेगा कि ये सब पाप कर्म हो रहे हैं, क्योंकि कर्मों का फल हमारे सामने आता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो क्या फल आते हैं? तन के रोग, कोई ना कोई तन में बीमारी लगना, मन की अशांति, मन खुश नहीं रहेगा, उदास रहेगा, परेशान रहेगा। आज टेंशन सबसे बड़ी बीमारी क्यों है दुनिया में? फिर धन की खींचतान रहेगी, धन से भी बहुत सुखी नहीं रहते, और संबंधों में भी अनबन, कोई ना कोई कारण से संबंधों में मन मुटाव बने रहना, संबंधों में संतुष्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो ये चारों प्रकार के दुख मनुष्य के जीवन में आज चलते रहते हैं। कोई कहेगा हम ये चार प्रकार से सुखी हैं? तन से भी सुखी हैं, मन से भी सुखी हैं, धन से भी सुखी हैं, संबंधों में भी सुखी हैं, क्या कहेंगे? जो समझते हैं हम सुखी हैं, चारों प्रकार से हम सुखी हैं, कभी भी कोई दुख हमें नहीं होता है, वो हाथ उठा सकते हैं। देखो, तो नहीं के बराबर। तो इसका मतलब ये पाप कर्मों का फल किसी ना किसी रूप में, कभी तन का रोग है, कभी मन की अशांति है, कभी धन ऊपर नीचे हो रहा कभी संबंधों में परेशान हैं हम। हाँ, भले धन बहुत है लेकिन संबंधों में तो सुखी है ही नहीं, क्योंकि वहां अहम का टकराव होता रहता है। तो इसीलिए ये परिणाम हमारे सामने आते हैं। और संबंधों में हम ज्यादा परेशान किससे होते हैं? एक दूसरे की कमियां देखते हैं ना, व्यक्ति में गुण और अवगुण कमियां दोनों होते हैं, लेकिन उसके 36 गुण होंगे वो हमें नहीं दिखाई देंगे, उसकी एक कमी होगी वो हमें ज्यादा नजर आती है। एक बार ऐसे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और वो अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक व्हाइट पेपर लिया और व्हाइट पेपर में एक कॉर्नर में उन्होंने एक काला डॉट बनाया और फिर स्टूडेंट से पूछा ये क्या है। तो 90% स्टूडेंट्स ने कहा कि ये काला डॉट है, 10% ने कहा ये व्हाइट पेपर है। तो ज्यादा की नजर किसके ऊपर गई? उस पूरे व्हाइट पेपर पर सिर्फ एक कॉर्नर में एक छोटा काला डॉट था, लेकिन किस पर नजर गई? काले डॉट के ऊपर, है ना, व्हाइट पेपर नजर नहीं आया। जैसे कहेंगे कि सफेद कपड़े पहने हैं और उसमें थोड़ा भी दाग लगा होगा तो ज्यादा नजर कहाँ जाएगी? तो ऐसे ही इंसान की दृष्टि है आज के समय में कि हम कमियों को ही देखते हैं और उनकी कमियों के अनुसार फिर उनकी हम शिकायत करते रहते हैं, उनसे हम असंतुष्ट रहते हैं, उनसे हम खुश नहीं रह पाते हैं, तो संबंधों में सुखी नहीं रह पाते। फिर दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो हैं पुण्य कर्म। पुण्य कर्म हम उन्हें कहेंगे आवश्यकता के समय किसी को सहयोग देना, कोई कष्ट में है, दुख में है, अभाव में है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसके कष्ट को दूर कर दें, उसको अभाव मुक्त कर दें। तो आज कितनी समाज सेवा करते हैं लोग, कितने एनजीओज बने हुए हैं, कितने क्लब्स बने हुए हैं जो इस तरह के दान पुण्य के कार्य करते हैं। तो जो दान पुण्य करते हैं उनमें है अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, जिसको अन्न की आवश्यकता है, भूखे हैं उनको अन्न देना, वस्त्र देना, गरीब हैं उनको वस्त्र देते हैं, कोई बीमार है, रोगी हैं, उनको रक्त दान की आवश्यकता होती है तो रक्त दान देते हैं, अंग दान भी करते हैं, नेत्र दान करते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, कैंप्स लगाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं, ये सब क्या है? पुण्य के कार्य। लेकिन जैसे कहा कि हर कर्म के पीछे भाव क्या है, अगर हम ऐसा दान करते हैं जिसके लिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य, कि अगर हमने अपने दाएं हाथ से दान किया तो बाएं को भी पता ना चले कि हमने दान किया है, तो वो महापुण्य होता है। लेकिन अगर हम दान करते हुए अपने यश की कामना करते हैं कि हम इतनी समाज सेवा करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलना चाहिए? थोड़ा हमारा नाम तो होना चाहिए, थोड़ी हमारी महिमा तो होनी चाहिए। होते हैं ना लोग प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी बनवाते हैं, मंदिर बनवाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो कितने नाम होते हैं उसमें, दानदाताओं की पूरी सूची होती है कि किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो अगर हमने यश की कामना की और हमने अपना नाम लिखवा दिया तो कितना हमने गंवा दिया उसमें, आधा पुण्य हमारा उसमें चला गया, क्योंकि उसका फल हम यहाँ ही पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम वर्णन भी करते हैं उसका, चार लोगों के सामने या फिर पूरी सभा में हम वर्णन करते हैं कि हम कितनी समाज सेवा करते हैं या कितना दान करते हैं। तो अगर हमने वर्णन कर दिया तो तीन चौथाई हमने उसका पुण्य गंवा दिया। और मानो ये कार्य करते हुए हमारी आपस में कुछ कहा सुनी हो गई, क्योंकि ये जो भी कार्य होते हैं एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो फिर कई मिलकर उसको कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपस में उस बात को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई तो वो पूरा ही जीरो। तो यूं तो हम सोच रहे हैं हम तो बहुत सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कैसे मिलेगा? कितना निस्वार्थ भाव से हम उसे कर रहे हैं। फिर दान पात्र को देना होता है, पात्र को दान देना। आज हम भिखारी को भीख देते हैं और वो जाकर के उससे शराब पी लेता है या जुआ खेलता है, तो हमारा वो दान सफल हुआ, निष्फल गया, क्योंकि हमारे दिए हुए पैसे से उसने बुरा कर्म किया, पाप कर्म किया, तो वो पात्र नहीं है। या तो हम उसे पात्र बनाएं, योग्य बनाएं। आप किसको कब तक अन्न दोगे, खाना कब तक खिलाओगे, कब तक किसी को वस्त्र दोगे, एक सीमा होती है ना। सारी जिंदगी हम किसी को दे सकते हैं? जो व्यक्ति योग्य नहीं है, वो खुद कमा नहीं सकता, भिखारी है, माना रोज भीख मांगता है, तो आप कब तक उसे खिला सकते हो? तो शिव बाबा हमें कौन सा पुण्य करना सिखाते हैं कि आप उसको ऐसे कर्म करने के योग्य बना दो कि वो अपना खाना खुद कमा सके। ये सही अर्थों की सेवा है, सही अर्थों में पुण्य है। लेकिन अगर हमने सिर्फ एक समय दे दिया और वो भी उसने उसका दुरुपयोग कर लिया। एक बार ऐसे ही जो क्लब्स होते ना, रोटरी क्लब वालों ने बॉम्बे में जो चौल होती है, माना गरीबों की बस्तियां होती हैं, वहां पर देखा कि सर्दियों के दिन हैं और इन लोगों के पास कंबल नहीं है, तो उन्होंने उनको कंबल बांटे। फिर उनका वो फॉलो अप करते हैं तो सारी बस्ती में कंबल बांट दिए। फिर 3 महीने के बाद देखा कि उन्होंने कंबल यूज किए नहीं किए, तो देखा कि 90% लोगों ने कंबल बेच करके शराब पी ली थी। तो उस दान को हम कहेंगे कि वो उनका निष्फल हो गया, है ना, क्योंकि उन्होंने उसको उस तरह से उपयोगी नहीं किया जिस तरह से उनको उन्होंने सोचा। ऐसे ही जो भिखारी होते हैं ना, कई बार वो भीख मांगते हैं लेकिन उनके पास भी धन इकट्ठा हो जाता है। एक बार एक भिखारी ने लॉटरी का टिकट खरीदा और उसका पहला प्राइस था कार, तो किसी को पता चला तो उसने पूछा कि तुमने लॉटरी खरीदी है और मानो तुम्हारा पहला नंबर लॉटरी लग गई, तुमको कार मिल गई, तो फिर तुम क्या भीख मांगना बंद कर दोगे? तो उसने कहा, नहीं, कार से भीख मांगने जाऊंगा। हाँ, तो जिसका वो संस्कार बन जाता है फिर उनका वो छूटता नहीं है। और तीसरे प्रकार के जो कर्म हैं वो सत्कर्म हैं, और सत्कर्म वर्तमान समय परमात्मा शिव स्वयं हमें करना सिखा रहे हैं, जो परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं उनकी श्रीमत के अनुसार किए गए कर्म सत्कर्म हैं। तो सत्कर्म कौन से हैं? जो आत्मिक स्थिति में किए जाते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान मिला तो मैं आत्मा हूँ और हम दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से हम वो कर्म करते हैं तो सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। सारे भेदभाव यानी जो भी धर्म जाति भाषा देश के भेदभाव, क्योंकि आत्मा का कोई दैहिक धर्म नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, तो एक समभाव में हम आ जाते हैं और इसीलिए उस प्रकार से किए गए पापकर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं। फिर सत्कर्म वो हैं जो निर्विकारी स्थिति में किए गए कर्म हैं, क्योंकि परमात्मा जो हमें श्रीमत देते हैं यानी हम जो योग लगाते हैं ईश्वर से, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि हम वो निर्विकारी स्थिति में कर्म कर पाए। और भगवान की याद में हम कर्म करते हैं, जब हम राजयोगी हैं तो हम कर्म योगी बन जाते हैं, यानी कर्म करते हुए भी हम ईश्वर की याद में कर्म करते हैं तो वो सत्कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म का फल क्या होता है? वो एक का पदम गुना फल होता है। सामान्य कर्म की गति है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, लेकिन सत्कर्म का परिणाम सामान्य कर्म की गति के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट परमात्मा की श्रीमत के अनुसार किए गए कर्म हैं। इसीलिए ये कर्म एक का पदम गुना फल देने वाले हैं। तो ये आम का बीज बोने की तरह है, हाँ, क्योंकि कर्मों की तुलना हम बीज से करते हैं, तो कई प्रकार के बीज हम बोते हैं खेती में भी। मानो आपने एक गोभी का बीज बोया तो आपको कितनी गोभी मिलेगी? कितनी मिलेगी? एक गोभी का फूल मिलेगा, है ना। फिर अगर दोबारा गोभी चाहिए तो फिर से डालना पड़ेगा। पर अगर मैंने कोई फसल बोई, अगर हमने गेहूं ज्वार मक्का बाजरा बोया, तो फिर हमें एक से एक नहीं मिलेगा, एक से अनेक हो जाएगा, लेकिन एक सीजन मिलेगा। और सीजन के बाद अगर हमें दोबारा चाहिए तो फिर से हमें वो फसल बोनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने आम का बीज बोया, आम अमरूद नारियल सेब ये हमने बोया, तो हमें तुरंत फल नहीं मिलता है, हमें कुछ इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब वो फल देना शुरू करेंगे तो फिर हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियां भी उसको खाती हैं। आम के लिए तो कहते हैं कि दादा बोए और पोता खाए, तो इसका मतलब अनगिनत फल हमें मिलता है। तो ऐसे ही सत्कर्मों का फल है कि हम वर्तमान में ही उसका फल अनुभव नहीं करते, लेकिन आने वाले 21 जन्मों तक, आपने समझा समय के काल चक्र में कि सतयुग त्रेता युग ये जो दो युग हैं, इन दो युग की प्रारब्ध हम वर्तमान संगम युग के समय पर ही बनाते हैं, जब परमात्मा शिव के श्रीमत के अनुसार हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और इन सत्कर्मों का फल क्या होता है? चारों प्रकार के सुख, तन मन धन संबंध, ये चारों भाग्य संपूर्ण रूप से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उसी मनुष्य को सुखी मनुष्य कहेंगे। तो हमने देखा कि जो सतयुग का समय था, आपने सुना मॉर्निंग सेशन में भी, कि वो सतयुग के समय पर देवी देवताएं होते हैं, सत्कर्मों की प्रारब्ध के रूप में वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं और सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। तो तन का भाग्य है क्योंकि वो सदा ही स्वस्थ हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, उन्हें कोई रोग शोक कष्ट होता ही नहीं है, लंबी आयु जीते हैं, लगभग 150 वर्ष की आयु होती है एक जन्म की, और मन का सुख है, मन का सुख, मन सदा ही सुखी है, शांत है, प्रसन्न है। आज हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हुए, तो उनके यादगार मंदिर हम बनाते हैं, और मंदिरों में समय प्रति समय हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो क्यों दर्शन करने जाते हैं, क्यों दर्शन करने जाते हैं, क्या मिलता है, दर्शन करके क्या मिलता है, क्या मिलता है बताइए? शांति मिलती है, और फिर वो देवता है, माना वो सुख मिलता है, और वो देवता है माना देने वाले हैं, तो हम अपनी मनोकामनाएं भी उनके सामने रखते हैं, जो हमारी इच्छा है वो हमारी इच्छा को पूरा करें। तो जो स्वयं मूर्ति, जड़ मूर्ति जिनकी ये अनुभव करा सकती है, जब वो चैतन्य में रहे हैं इस धरा पर, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना शांति, प्रेम, सुख से संपन्न होंगे, कि वो अनुभव हम उनके जड़ चित्रों से भी करते हैं। ऐसे ही धन, अकिचार धन के मालिक होते हैं देवी देवताएं। कितना धन, कि धन मिट्टी के समान है, वहां सोने चांदी के महल बनाते हैं। यहां तो हम जो मकान बनाते हैं वो सीमेंट पत्थर ईंट के बनाते हैं, लेकिन वो सोने चांदी के महल बनाते हैं। और यथा राजा तथा प्रजा है, जिसके लिए कहा राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। तो कोई गरीब नहीं होता, कोई अभाव में नहीं होता, सब सुखी हैं, धन से भी सब सुखी हैं। और संबंध, संबंध भी जो है वो दैवी संबंध है, निस्वार्थ स्नेह देने वाले संबंध है ना। आज का जो स्नेह होता है ना, स्वार्थ का स्नेह होता है। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ आपसे पूरा होता है, तब तक उसका प्यार है। जब स्वार्थ खत्म हो गया तो प्यार भी खत्म, लेकिन देवी देवताओं का ऐसा प्यार नहीं होता। तो ऐसा समय जो था ना, ये सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप सतयुग और त्रेता युग, ये दो युगों तक संसार में स्वर्ग का समय चलता है। तो ये चौथे प्रकार के जो कर्म हैं वो अकर्म कहलाते हैं, ये है सत्कर्म। लेकिन देवी देवताओं के जो कर्म हैं वो अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि देवी देवताएं पाप कर्म नहीं करते, वो निर्विकारी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हैं। इन्हीं के वश मनुष्य पाप करते हैं, इसीलिए कोई पाप कर्म नहीं होता। पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई अभाव में नहीं है, कोई दुखी नहीं है। और स्वयं के लिए वो न्यूट्रल एक्शन हो जाते हैं, ना तो पाप बनता है ना वो पुण्य बनता है, इसीलिए उसको अकर्म कहा गया। वो जो जमा का खाता है उनका, जैसे हम बैंक बैलेंस रखते हैं, आपने पूरा जीवन कमाया और एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाया कि रिटायरमेंट के बाद जितना समय हम जिएंगे, ये बैंक बैलेंस से हम जीवन यापन करते रहेंगे। हाँ, उससे एक अच्छी पेंशन हमको मिल जाती है। कई बार मूल जो है वो वैसा ही रहता है, लेकिन उससे जो ब्याज मिलता है उससे ही हमारा काम चल जाता है। तो ऐसे ही देवी देवताओं के जीवन में होता है कि जो संगम युग पर उन्होंने सत्कर्मों की कमाई की, उसी से ये दो युग उनका सारा कर्म का चलता रहता है, और कोई पाप पुण्य का खाता उनका नहीं बनता है। लेकिन जब द्वापर युग आता है, तीसरा युग, उसके बाद फिर ये कर्म की गति का सिद्धांत लागू होता है। पर कई बार हमारे शास्त्रों में ये कहा कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोगती है, तो क्या कहेंगे? किसने सुना है 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है, यानी कर्म का फल भोगने के लिए वो कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, पशु पक्षी कुछ भी बनती है ना, जैसे कर्म किए उस अनुसार उस योनि में उसको जन्म मिलता है। तो जिन्होंने ऐसा सुना है वो हाथ उठाएं। काफी लोगों ने सुना है, तो फिर अभी हम इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। क्या सचमुच 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है, और या फिर सिर्फ 84 जन्म लेती है? तो यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, मान लो हमने एक बार मान लिया कि हम सब 84 लाख योनि से घूम कर आए, क्योंकि कहते हैं मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और वो हमारे पुण्य कर्मों का फल है। तो अगर हमें वो मानव जीवन मिला सारे पाप कर्मों के फल भोगने के बाद, पुण्य कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप, तो मनुष्य योनि कैसी होनी चाहिए? सभी मनुष्य कैसे होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। हाँ, निश्चित है ना, पाप कर्मों का फल तो हम दूसरी योनियों में भोग कर आ गए, तो फिर मनुष्य योनि में दुख क्यों मिलना चाहिए? लेकिन हम क्या देखते हैं, हाँ, जैसे कहा कि वर्तमान में तो हम कोई भी पूरा सुख अनुभव करते ही नहीं। करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते ना, अभी अभी हमने सबसे पूछा। और एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, आज जन्म से ही बच्चे बीमार होते हैं। आप बच्चों के अस्पताल में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे वो शिशु होते हैं, उनको कैसी कैसी बीमारियां, जन्म जात बीमारियां होती हैं। कोई का दिमाग ही कमजोर होता है जन्म से ही, जन्म से ही उनको सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है ना, पूरा शरीर जो होता है वो ऐंठन वाला जैसे कहते हैं, वो हाथ पांव सीधे ही नहीं होते उनके, ऐसे अजीब अजीब सी बीमारियां, किसी को हार्ट की बीमारी होती है। अब 84 लाख योनि में आत्मा घूमकर आई, इतनी मुश्किल से इंसान का जन्म मिला, और वो भी ऐसा, अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया, अभी तो बच्चा जन्मा ही है, तो फिर कहां से ऐसा भोगना भोगनी पड़ रही है उसको? तो इसका मतलब दूसरी योनियों में हम कर्म का फल भोगकर नहीं आए, उसको सिद्ध करता है। हम जानते हैं ये प्रकृति का नियम है, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। अगर हमने आम का बीज बोया है तो हमें पता है कि 2 साल के बाद हमें आम ही मिलने वाला है। आप आम का बीज ये सोचकर नहीं बोते कि आम बोया है इससे हमें अंगूर मिलेगा, या आम बोया है इससे हमें नारियल मिलेगा। अगर विज्ञान भी उसमें कोई परिवर्तन ला सकती है तो क्या परिवर्तन ला सकती है? कि वो छोटे आम को बड़ा बना सकती है, हरे आम को पीला बना सकती है, खट्टे आम को मीठा बना सकती है, लेकिन आम को वो पपीता बना सकती है या आम को नारियल बना सकती है? नहीं। तो मतलब जो आम का बीज है वो आम का ही फल देगा। ऐसे ही मनुष्य आत्मा, वो मनुष्य योनि का बीज है, और इसीलिए जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो पुनर्जन्म भी मनुष्य के रूप में ही लेती है। वो कोई दूसरी योनि में जाकर कर्म का फल नहीं भोगती। मनुष्य आत्मा जाकर के कोई चिड़िया, सांप, बिच्छू, गाय, घोड़ा, ये सब नहीं बनती जो आप चित्र में देख रहे हैं। और कर्मों के परिणाम स्वरूप वो पशु जैसी गति को प्राप्त कर सकती है। पशु नहीं बनती, लेकिन पशु जैसी गति होने का मतलब, मानो आज एक भिखारी है, वो भीख मांगता है, उसको कोई जो दे देता है वो खाता है। ऐसे ही एक कुत्ता गली में घूमता है, उसको भी कोई जो देता है वो खाता है। अब वो भिखारी, भिखारी जानवर नहीं है, लेकिन उसके जीवन का स्तर कैसा है? कैसा है? उस कुत्ते जैसा है। कि जैसे वो कुत्ते की गति है, ऐसे ही वो मनुष्य की गति भी ऐसी है। तो पशु जैसी गति है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? आज एक इंसान बोझ उठा करके अपना जीवन यापन करता है, जैसे कुली वगैरह है, और जानवरों पर भी हम बोझ लादते हैं। तो अब वो जानवर तो नहीं है, लेकिन जीवन कैसा है? तो जीवन पशु जैसा हो गया। तो इसीलिए कहा कि कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य के जीवन की गति वैसी हो जाती है। आज एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्म लेता है और उसी समय एक बच्चा झोपड़ी में जन्म लेता है, दोनों ने एक ही राशि में जन्म लिया, लेकिन दोनों की डेस्टिनी बिल्कुल अलग है। जिसने करोड़पति के घर में जन्म लिया वो तो जन्म से ही करोड़पति, क्योंकि वारिस हो जाता है, बच्चे ने जहां जन्म लिया वो वारिस है, तो उसको करोड़ कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जिसने झोपड़ी में जन्म लिया उसे हर बात के लिए जीवन में संघर्ष करना है। अब ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति नहीं बन सकता, बन सकता है, बन भी जाते हैं, लेकिन वो उसकी मेहनत का फल है, कर्मों का फल है। लेकिन जिसने करोड़पति के घर में जन्म लिया वो उसको भाग्य में मिला है। जो हमें बिना मेहनत के मिलता है उसे हम भाग्य कहते हैं, और जो हम मेहनत करके कमाते हैं, फल पाते हैं, उसको हम कर्म का फल कहते हैं। तो ये अंतर है, और इसीलिए जब हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है। जिसे कहा मनुष्य से हम देवता बनते हैं, है ना, वो आप सुन रहे हैं दो दिन से, नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो वो कर्म ही हमें नर से नारायण बनाते हैं और कर्म ही हमें नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। मनुष्य ही जब कर्मों से गिरता है तो उसे हम असुर कहते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जब धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो वो देवता कहलाते हैं, इसी धरती पर देवता होते हैं। जो आपने सुना कि सतयुग का समय देवी देवताओं की दुनिया थी, कोई देवी देवताएं आसमान में नहीं रहते ना, हम सुनते हैं ना, शास्त्रों में दिखाते हैं कि आसमान में कहीं देवताएं रहते हैं और असुर कहां रहते हैं, धरती के नीचे पाताल में रहते हैं, और इस धरती पर तो मनुष्य रहते हैं। तो मनुष्य जो है वो देवताओं और असुरों के बीच में है, लेकिन कोई देवता आसमान में नहीं रहते और कोई असुर पाताल में नहीं रहते, स्वर्ग नरक इसी धरती के ही विषय हैं। जब मनुष्य धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो वही देवता कहलाते हैं, और वही संसार स्वर्ग का समय होता है। और वही मनुष्य जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य क्या हो जाते हैं, आसुरी हो जाते हैं, जैसे कहा विकारी हो जाते हैं। तो वही समय धरती के नरक का समय कहलाता है, और ये वर्तमान समय जो हम कहते हैं वो कौन सा समय है, कौन सा समय है, कलयुग के समय को हम क्या कहते हैं। फिर कई बार शिकायत करते हैं भगवान से, भगवान ऐसी दुख वाली दुनिया तूने क्यों बनाई। एक गीत भी है ना, दुनिया बनाने वाले काहे क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को ये दुनिया बनाई, है ना, सुना होगा आपने। तो हम भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ऐसी दुनिया, है ना, और दुनिया में इतना सब कुछ अत्याचार पापाचार दुराचार होता है, तो क्या भगवान देखता रहता है, भगवान कुछ कर नहीं सकता। फिर हम अपने जीवन के लिए भी भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, मुझे ही ऐसे घर में क्यों जन्म दिया, मेरे ही कर्म ऐसे क्यों बनाए। तो हर बात के लिए कौन दोषी है, मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया तो भगवान ने बच्चा दिया, उसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो किसने ले लिया, किसने ले लिया, भगवान ने ले लिया। तो भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, दोनों काम भगवान के हैं। सोचो ना, वो सुख दाता है, उसको हम दुख हरता सुख करता कहते हैं, तो क्या वो हमें दुख देगा। और वो हमारा मात पिता है, जीवन में भी मात पिता कभी बच्चों को दुख देने का सोचते हैं, सोचते हैं क्या, सोचते हैं कि हमारे बच्चे, हम भले दुखी रहें लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहने चाहिए, सुखी रहने चाहिए। तो क्या भगवान हमारे लिए दुख की दुनिया बनाएंगे। अगर आपको कहा जाए आप अपने बच्चों का भाग्य लिखो तो आप क्या लिखेंगे, क्या कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छे से अच्छा उनका जीवन हो, यही कोशिश करते हैं ना सभी माँ बाप, क्या कोशिश करते हैं, आप सभी बैठे हैं ना, सभी रहते हैं परिवारों में, क्या भावना रहती है? यही रहती है। तो भगवान जो हमारा अनादि मात पिता है, क्या वो हमारे लिए ऐसी दुनिया बनाएगा? नहीं। तो जो भी आज हम जीवन जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? भगवान ने तो हमारे लिए सुख की दुनिया बनाई, स्वर्ग बनाया। इसीलिए कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा भगवान भगवती बनाया। आज देवी देवताओं की हम भगवान के रूप में ही पूजा करते हैं ना, तो उसने तो हमें इतना ऊंचा और श्रेष्ठ बनाया। लेकिन जब हम स्वयं को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, अपने कर्मों से हम गिरते जाते हैं, तो हम ही अपने लिए कलयुग बनाते हैं। तो ये कलयुग किसने बनाया? भगवान ने बनाया, हमने बनाया? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? किसने बनाया? भगवान ने बनाया, हमने बनाया? हमने ही अपने कर्मों से इस दुनिया को कलयुग बना दिया। और अब ये जैसे कहा ना, कोई घर बहुत पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको तोड़ना पड़ता है, तब उसकी जगह फिर नया घर बन सकता है। और इसीलिए परमात्मा जब आते हैं, तो फिर इस पुरानी कलयुगी दुनिया का परिवर्तन करके फिर से नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। फिर कई बार हम दूसरों से शिकायत करते हैं, भगवान से तो करते ही करते हैं, दूसरों के लिए हम कभी इनका बुरा नहीं चाहते, हम कभी इनको दुख नहीं देते, पर ये तो हमेशा ही हमारा बुरा करते हैं और ये तो हमें हमेशा ही दुख देते हैं। होता है ना दूसरों से कि हम इनका कितना भी भला कर लें, लेकिन इनको हमारा भला नजर ही नहीं आता है। या फिर ये भी शिकायत हम करते हैं कि आज दुनिया में जो बेईमान हैं या दुनिया में जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो तो मौज से और संपन्न जीवन जी रहे हैं, और हम ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो हमें तो खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है। ये भी देखते हैं हम, विरोधाभास आज कलयुगी दुनिया में। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और आत्मा के संचित कर्म भी होते हैं। कुछ कर्म होते हैं जो हमें तुरंत फल देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कर्म होते हैं हमारे पूर्व जन्मों के भी संचित कर्म जो हैं, वो कब फल देंगे हम कह नहीं सकते। तो तुरंत फल देने वाले कर्म है, मैंने किसी को मुस्कुराया तो सामने वाला भी क्या करेगा, हमको मुस्कुरा के ही उसका जवाब देगा। ऐसे ही होता है, किसी पर हमने गुस्सा किया तो सामने वाला भी क्या करता है, गुस्सा करता है। किसी से हमने रिस्पेक्ट से बात की तो सामने वाला भी कैसे बात करेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया, जिसको विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन कुछ कर्म हमें तुरंत फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो आत्मा के साथ दूसरे जन्मों तक भी चले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही हमसे ऐसा व्यवहार करता है जो हम अपेक्षा नहीं करते, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में हमने उनके साथ कुछ ऐसा किया है, और वो हमारे समीप संबंध में इसीलिए आई है क्योंकि उसे अपना लेन देन का हिसाब किताब पूरा करना है। क्योंकि कर्म का हिसाब किताब आत्मा को चुकतू करना ही पड़ता है, जिसको बैलेंस शीट ऑफ लाइफ हम कहते हैं। जैसे किसी के साथ हमने कर्ज लिया, तो वो कर्ज जब तक हम चुकाएंगे नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो ये कर्मों का भी कर्ज होता है, जब तक हमने उसको चुकाया नहीं तब तक वो आत्मा हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। तो जब हम कर्म की गति को समझ जाते हैं, तो फिर हम अगर हम टिट फॉर टैट करते हैं, आज मॉर्निंग में भी हमने समझा, नॉर्मली हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे को तैसा। तो अगर हम भी उसके साथ फिर बुरा कर रहे हैं तो हमारा कर्म और उलझता जाता है, पर अगर हमें उसे खत्म करना है तो वो हमारा भले बुरा करे, लेकिन अगर हम भला कर रहे हैं फिर भी उनके प्रति हम शुभ भावनाएं रखते हैं, या दुआएं देते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, तो हमारा वो कर्म खत्म हो जाता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जब ये कर्म की गति का ज्ञान हमें मिलता है, तो उसके लिए हम स्वयं को जिम्मेवार समझते हैं, दूसरों को हम दोष नहीं देते ना। नॉर्मली जैसे हमारी उंगली दूसरों की ओर होती है, लेकिन अपने कर्मों के लिए जो भी हमारे सामने आ रहा है, हम खुद उत्तरदायी हैं, और इसीलिए फिर हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। ये जब रियलाइजेशन होता है तो परिवर्तन लाना हमारे लिए आसान हो जाता है, और परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। बहुत क्यों, क्या, कैसे में हमारी बुद्धि नहीं जाती, नहीं तो हम प्रश्नों में ही चले जाते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी जो हम प्रश्नों में जाते हैं उसकी बजाय उसको स्वीकार करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, आंतरिक शक्ति वो हमें मिलती है। तो वर्तमान समय जो समय है, उसमें हमें तीन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। अब परमात्मा शिव ने जो हमें कर्मों की गुह्य गति समझाई है, उसके अनुसार हमें पिछले 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, क्योंकि द्वापर युग से हमने पाप कर्मों को करना शुरू किया, विकारों के वश हो गई आत्मा, तो 63 जन्मों से आत्मा के ऊपर वो पाप कर्मों का बोझ है। और हमारे अभी घर जाने का समय है, क्योंकि ये चक्र समाप्त होकर के सभी आत्माओं को वापस घर परम धाम जाना है, तो परम धाम जाने के लिए हमें फिर से अपने मूल स्वरूप में आना है। तो कोई भी आत्मा पाप कर्म तो लेकर जा नहीं सकती, तो उसे यहीं खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे। फिर दूसरा है, वर्तमान में हमें कोई विकर्म नहीं करना है। एक तो जो ऑलरेडी विकर्म किए हुए हैं उन्हें विनाश करना है, और वर्तमान में भी हमें अटेंशन रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो, और तीसरा आने वाले 21 जन्मों के लिए, सतयुग त्रेता के लिए हमें सत्कर्मों की पूंजी जमा करनी है। तो अभी विकर्मों का विनाश कैसे होगा, वो भी तीन तरह से होता है। पहला है कि हम परमात्मा की याद से जब हम योग लगाते हैं, और जब हम उसकी लगन में, या हम कहेंगे उसकी याद में लीन होते हैं, परमात्मा को बहुत एकाग्रता से, हम कहेंगे बहुत पावरफुल रीति से हम याद करते हैं, तो वो योग अग्नि का काम करता है और हमारे पाप कर्म उसमें भस्म हो जाते हैं। ऐसा योग, साधारण योग नहीं, लेकिन पूरी एकाग्रता वाला योग, जैसे हम दिखाते हैं कि अगर कागज सूर्य के प्रकाश में पड़ा है तो कभी नहीं जलेगा, लेकिन अगर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा करके सूर्य की किरणों को उस कागज पर फोकस कर दिया, कई बार बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं तो क्या होता है, मिनटों में कागज जल जाता है। तो किसने जलाया, जो एकाग्र हुई सूर्य की किरणें एक बिंदु पर, उससे इतनी गर्मी पैदा हो गई कि वो कागज जल गया। तो ऐसे ही जब हम सोने को अग्नि में तपाते हैं, तब उसकी गंदगी सारी बाहर निकल जाती है, ऐसे तो उसकी अलॉय निकलती नहीं, तो भट्टी में तपाना पड़ता है। ऐसे ही योग जब भट्टी के रूप में होता है, यानी पूरी एकाग्रता है परमात्मा से हमारी, तो फिर हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, पाप कर्म से आत्मा हल्की हो जाती है और पावन बनती है, पवित्र बनती है, और श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमें जमा करना है। तो जितना हमारा श्रेष्ठ कर्मों का पलड़ा भारी होता जाएगा, उतना हमारा पाप कर्मों का खाता हल्का होता जाएगा। दुनिया में भी हम देखते हैं, मानो किसी को हत्या के आरोप में उम्र कैद हो गई है ना, लेकिन वहां जेल में उसका रिकॉर्ड अच्छा है और उसका पूरा व्यवहार अच्छा है, तो फिर क्या करते हैं, उसकी सजा उम्र कैद से कुछ साल में बदल जाती है और व्यक्ति छूट जाता है। तो क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए जेल में रहते हुए, तो उसके पाप कर्मों का खाता हल्का हो गया तो सजा कम हो गई। तो ऐसे ही जितना हम श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा पाप कर्मों का खाता हल्का होता जाएगा। और तीसरा है समर्पित भाव से कर्म करना, समर्पण कर देना अपने आप को। जैसे गीता में भी कहा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण में आ जाओ मतलब जैसे हम भगवान को कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये समर्पण भाव है ना, कि आप सब कुछ आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो वो आरती में तो हम सिर्फ गाते हैं, बाकी तो सब मेरा ही है ना, सिर्फ गा लेते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा। लेकिन यहाँ पर परमात्मा शिव को सचमुच हम इस भाव से, जैसे कहा ना कर्म के पीछे क्या भाव है, उसके कारण उस कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तो सचमुच जब इस भाव से हम कर्म करते हैं कि परमात्मा का ही दिया हुआ ये तन है, ये मन है, ये धन है, और सचमुच तो भगवान का ही दिया हुआ है, तो उसका उसको ही समर्पण है। और जब वो समर्पण होता है हमारा, उस भाव से हम कर्म करते हैं, तो भी हमारे पाप कर्म नाश होते हैं। इस पर भी एक उदाहरण देना चाहेंगे कि एक बार समय था भारत में जब चंबल घाटी में बहुत डाकू होते थे। तो डाकू तो बहुत लूटपाट, डकैती, साथ साथ हत्याएं भी करते हैं। तो इंदिरा गांधी का समय था वो, तो उन्होंने आपस में मिलकर के राय की पूरे कैबिनेट ने कि हम डाकुओं को समर्पण करा देते हैं, और समर्पण कराएंगे तो उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी। तो ये अनाउंस किया गया। उस समय जो गृह मंत्री थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, और उन्होंने डाकुओं के लिए ये शर्त रखी कि जो समर्पण कर देगा उसको खुली जेल में रखा जाएगा, और उनके ऊपर जो भी हत्याओं के आरोप हैं वो भी सब माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन समर्पण करना होगा सरकार के सामने। तो कौन डाकू बनकर रहना चाहता है, और सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है। और फिर इसके बाद ये भी सुविधा थी कि अगर खुली जेल में उनका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो फिर उनको उनके गांव में या वो जहां चाहेंगे उनको समाज में रहने के लिए घर बना करके भी सरकार देगी। तो सारे ही डाकुओं ने समर्पण कर दिया। अब उनको खुली जेल में रखा गया, और वहां पर जो धार्मिक संस्थाएं थी उनको बुलाया गया कि इन डाकुओं को जो है आप कुछ अच्छी मोटिवेशनल बातें या धार्मिक बातें समझाइए ताकि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो उसमें ब्रह्मा कुमारी को भी बुलाया गया। तो अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनें वहाँ खुली जेल में जाते थे और राजयोग सिखाते थे उनको। तो उनमें से एक डाकू पंचम सिंह थे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हत्या के आरोप थे, और वो सचमुच जब राजयोग सीखने लगे तो सीखते सीखते वो उनके दिल को वो बात लग गई और वो राजयोगी बन गए। तो जेल में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, और निश्चित है रिकॉर्ड अच्छा हो गया तो सरकार का जो था वो वादा था कि जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा उनको सरकार खुली जेल से भी निकाल करके जहां वो रहना चाहेंगे उनको घर बनाकर देगी। तो फिर उन्होंने उनके गांव में उनको घर बनाकर दिया। उनकी सिर्फ एक ही बेटी रह गई थी, बाकी तो सब परिवार में जा चुके थे। तो वो फिर उनकी बेटी जो है वो वहां उनके साथ रहने लगी। तो उनको विचार चला कि जब राजयोग ने मेरे जीवन को इतना परिवर्तन किया है तो ये घर अब सेंटर बन जाएगा, मुझे यह घर अपना घर नहीं रखना है, यहाँ से सब मतलब बेटी रहेगी वहां पर और यहाँ पर सबको राजयोग की शिक्षा मिले, ऐसा मेरी इच्छा है। और फिर उन्होंने उस घर को सेंटर ही बना दिया, उस गांव में वो ब्रह्मा कुमारी केंद्र बन गया। और उन्होंने खुद क्या किया, पूरे भारत में घूमकर ये राजयोग का प्रचार करना शुरू कर दिया कि कैसे मैं इतना खूंखार डाकू था और कैसे राजयोग से मेरा जीवन इतना बदल गया। और वो काफी साल तक, 85 साल तक जिए, और जब तक जिए तब तक उन्होंने यही सेवा की, यही सेवा करते रहे वो। तो कहने का भाव ये है कि कर्म समर्पण करते ही इतना हमारे जो जो देखो पिछले सारे उनके पाप कर्म सब धुल गए, सब माफ हो गए कि जब उन्होंने वो समर्पण कर दिया। तो ऐसे ही जब ईश्वर को हम समर्पण कर देते हैं तो हमारे वो सब, जैसे हम माफी की भी बात करते हैं, मानो कोई हमसे सॉरी बोलता है, कोई गलती कर देता है, सॉरी बोल देता है, मानो एक वो समर्पण का भाव है, तो फिर हम उसको माफ करते हैं नहीं करते, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ, तो खत्म हो गई ना वो बात। माना सच्चे दिल से अगर कोई माफी मांगता है तो हम कितनी भी बड़ी उसने गलती की है हम उसको भूल जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भी अगर हमने जो भी गलत काम किए और हमें पता चलता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और हम माफी मांगते हैं, यानी भगवान की शरण में चले जाते हैं और फिर आगे के लिए भी कि हाँ अब हम ऐसा काम फिर से नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आत्मा पावन बनती है इस संगम युग पर। कहते हैं तीन तरह से भगवान हमें पावन बनाते हैं। एक तो हम राजयोग जो सीख रहे हैं, तो राजयोग से हम अपने विकारों को, अपने पाप कर्मों को नाश करके पावन बनते हैं। तो भगवान के प्यार में, इसको कहते हैं प्यार में, उनकी शिक्षाओं से, उनके प्यार में हम पूरी तरह से पावन बन जाते हैं। और अगर नहीं बने तो फिर सजाओं से बनते हैं। तो इतनी दुनिया की आत्माएं हैं, इतने अरबों आत्माएं हैं, सब तो राजयोग नहीं सीख पाती। तो फिर जैसे कहा था आज मॉर्निंग में भी कि पाप कर्म लेकर आत्मा परम धाम नहीं जा सकती, तो उसे फिर यहां ही उसकी सजाएं, जिसे धर्म राजपुरी कहते हैं, धर्म राज की सजाएं उसे भोगनी पड़ती हैं और फिर उससे आत्मा पावन बनती है और घर जाती है। तो हम कैसे पावन बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहेंगे पावन? सजाएं भोगकर पावन बनना चाहेंगे या राजयोगी बनकर पावन बनना चाहेंगे? जो समझते हम राजयोगी बनकर हाथ उठाएं, देखो मेजोरिटी। तो फिर हमें क्या करना होगा, आज से ही परमात्मा की श्रीमद अनुसार हम श्रेष्ठ कर्म करें, उसकी याद में हम कर्म करें, ताकि हमारा पिछला खाता चुकतू होता जाए, पिछला खाता हमारा खत्म होता जाए। तो ये है कर्मों की गति, कि हम कर्मों का संन्यास तो नहीं कर सकते लेकिन अपने कर्मों को श्रेष्ठ जरूर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो शक्ति चाहिए वो हमें भगवान से ही मिलती है। तो वर्तमान समय ये सत्कर्म करने का समय है, ताकि हम अपने पाप कर्मों को खत्म करते हुए, अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को, अविनाशी कमाई को करते हुए पुनः सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएं। ओम शांति। तभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर आपका नेक्स्ट सेशन होगा।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो।